ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 28 मई 2023 के लिए है। विषय: प्राचीन और आधुनिक काला जादू, उपनाम कृत्रिम निद्रावस्था और सामोहन। स्वर्णपथ, नीति वचन: जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वो भ्रम में नहीं पड़ते, परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। उत्तरदायी अध्ययन, भजन संहिता। हे लड़को, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर के उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धार्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धार्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धार्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मूल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से, भजन संहिता। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो, और द्वीप जो बथेरे हैं वो भी आनंद करें। बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं। उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के नियन पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आकाश ने उसके धाम की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वो अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। हे धार्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। इतिहास। इसके बाद मुआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशफत पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशफत को बता दिया कि तल के पार से अदूम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख, वो हसासुन तमर तक, जो एन जद्दी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशफत डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वो यहोवा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशफत यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राजाओं के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इसराइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? और अब अमूनी और मुआबी और सईर पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया और वो उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश नहीं किया, देख, वही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दे दिया है, हमको निकालकर कैसा बदला हमें दे रहे हैं? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। तब यजीएल, जो जिकरिया का पुत्र था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। और वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलम के रहने वालों, हे राजा यहोशफत, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब वो बिहान को सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशफत ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सहमति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वो मारे गए। भजन संहिता। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगी। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायुओं से तिरपत रखूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसे दिखाऊंगा। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में नाम दिया गया है, पशु चंबकत्व या समूहन त्रुटि या नश्वर मन के लिए विशेषित शब्द है। ये गलत धारणा है कि मन पदार्थ में है और ये बुराई और भलाई दोनों है। ये बुराई उतनी ही वास्तविक और अधिक शक्तिशाली है जितनी अच्छाई है। इस विश्वास में सत्य का एक भी गुण नहीं है, ये या तो अज्ञानी है या दुर्भावनापूर्ण है। सम्मोहन का दुर्भावनापूर्ण रूप नैतिक मूर्खता में परिणित होता है। पशु चंबकत्व के पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि भगवान सभी को नियंत्रित करता है, जो वास्तविक सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत है, और उनकी शक्ति ना तो पशुओं की है और ना मानव की। विज्ञान पशु चंबकत्व, कृत्रिम निद्रावस्था या सम्मोहन में एक विश्वास, और इस विश्वास के आधार पर पशु होना निकारामकता है, जिसमें ना तो बुद्धि शक्ति है और ना ही वास्तविकता है, और इस अर्थ में ये तथाकथित नश्वर मन की एक अवास्तविकता अवधारणा है। लेकिन आत्मा का एक वास्तविक आकर्षण है। ध्रुव को सुई की ओर इशारा करना इस सर्वशक्तिमान या ईश्वर दिव्य मान के आकर्षण का प्रतीक है। क्योंकि परमेश्वर ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, ग्रहों का उसके निर्माता से अधिक मनुष्य पर कोई अधिकार नहीं है, परंतु मनुष्य जो परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रतिबिंब करता है, सारी पृथ्वी और उसकी सेना पर प्रभुता करता है। क्रिश्चियन साइंस मानसिक क्रिया के तय तक जाता है और उस थोड़ी सी को प्रकट करता है जो सभी दिव्य कर्यों के सही होने का संकेत देता है, जैसा कि ईश्वर मन की मुक्ति है और इसके विपरीत तथाकथित गलत क्रिया के कारण बुराई, मनुगतवाद, काला जादू, मंत्रमुग्धता, पशु चंबकित्व, सम्मोहन। विज्ञान की दवा दिव्य मन है। बेईमानी, कामुकता, झूठ, बदला, द्वेष, पशु प्रवृत्ति हैं और किसी भी तरह से मानसिक गुण जो बीमार को ठीक नहीं करते हैं। क्रिश्चियन साइंस आत्मा की समझ के माध्यम से भावतिक विश्वासों को नष्ट कर देती है और इस कारण की संपूर्णता स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। मानव मन बलों को मिटाकर जो भी नाम या ढोंग किया जाता है उसके तहत केवल बुराई काम कर सकती है। आत्मा और सामग्री के लिए अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधेरा घुल मिल नहीं सकते। बुराई एक इनकार है क्योंकि ये सच्चाई की अनुपस्थिति है। ये कुछ भी नहीं है क्योंकि ये किसी चीज की अनुपस्थिति है। ये असत्य है क्योंकि ये ईश्वर की अनुपस्थिति सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी का संरक्षण करता है। प्रत्येक नश्वर को ये सीखना चाहिए कि बुराई में ना तो शक्ति है और ना वास्तविकता। बुराई स्वयंभू है। वो कहता है, मैं एक वास्तविक अकाई हूं और मैं अच्छाई पर काबू पा रहा हूं। इस झूठ को सभी ढोंगों की बुराई को मिटा देना चाहिए। बुराई एकमात्र शक्ति खुद को नष्ट करता है। ये कभी भी एक छोटी सी अच्छाई को नष्ट नहीं कर सकती। अच्छाई को नष्ट करने के लिए बुराई का हर प्रयास एक विफलता है और केवल बुराई करने वाले को हमेशा के लिए दंडित करने के लिए सहायता करता है। यशाया में हम पढ़ते हैं, मैं उजाले का बनाने वाला और अंधेरे का सृजनहार हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का कार्य करता हूँ। लेकिन भविष्य अद्विक्ता ने ईश्वरीय कानून का उल्लेख करते हुए बुराई के प्रति विश्वास को अत्यंत बढ़ा दिया है। जब उसे सतह पर लाया और उसके सामने भाजिक शून्य को कम किया। धारा को शुद्ध करने के लिए मैली नदी को हिलाया जाना चाहिए। नयुक्त रासायनिक अकारण में जब बुराई भ्रम के लक्षण भर जाते हैं तो हम अपनी अज्ञानता में सोच सकते हैं कि भगवान ने बुराई को मिटा दिया है। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि ईश्वर का कानून तथाकथित पाप और उसके प्रभावों को उजागर करता है। केवल ये कि सत्य बुराई की सभी भावना और पाप करने की शक्ति को नष्ट कर सकता है। परमेश्वर या अच्छाई ने कभी भी मनुष्य को पाप करने के योग्य नहीं बनाया। ये अच्छाई के विपरीत है, यानी बुराई, जो पुरुषों को गलत काम करने में सक्षम बनाती है। इसलिए बुराई केवल एक भ्रम है और इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। बुराई एक मथिया विश्वास है। ईश्वर इसका रचयिता नहीं है। बुराई का काल्पनिक माता पिता झूठ है। बाइबल घोषित करती है, सब कुछ उसी दिव्य शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वास्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। ये ईश्वरीय विज्ञान की शाश्वत सत्यता है। यदि पाप, बीमारी और मृत्यु को कुछ भी नहीं समझा जाता तो वो गायब हो जाते हैं। जैसे सूरज से पहले वाष्प पिघलते हैं, वैसे ही अच्छाई की वास्तविकता से पहले बुराई गायब हो जाएगी। नश्वर मन पदार्थ में संवेदना के आधार कार्य करना पशु चंबकत्व है। लेकिन ये तथाकथित दिमाग, जिसमें से सभी बुराई आती है, खुद को विरोधाभास करती है और अनंत विज्ञान में व्यक्त किए गए शाश्वत सत्य या दिव्य मन को उपजना चाहिए। क्रिश्चियन साइंस की हमारी समझ के अनुपात में हम अनुवंशिकता, पदार्थ या पशु चंबकत्व में मन के विश्वास से मुक्त होते हैं और हम अमर होने की स्थिति के बारे में हमारी आध्यात्मिक समझ के अनुपात में इसकी काल्पनिक शक्ति के पाप को निष्क्रिय कर देते हैं। मानव के हित में अच्छाई बुराई पर अध्यात्म और पशु पर आधिपति होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा। इस खगोली स्थिति की प्राप्ति हमारे पूर्व जन्म को कम करेगी, अपराध को कम करेगी और महात्व आकांक्षा को उच्च लक्ष्य देगी। पाप की हर घाटी को ऊंचा किया जाना चाहिए और स्वार्थ के हर पहाड़ को नीचे लाया जाना चाहिए ताकि विज्ञान में हमारे भगवान का राजमार्ग तैयार हो सके। हर समय और सभी परिस्थितियों में अच्छाई के साथ बुराई को दूर करें, अपने आप को जानें और ईश्वर ज्ञान और बुराई पर विजय के अवसर की आपूर्ति करेगा। प्यार की कश्मकश में जकड़े, मानवीय घृणा आप तक नहीं पहुंच सकती। एक उच्च मानवता का सीमट एक देवत्व में सभी हितों को एकजुट करता है। ये भावतिक दुनिया अब भी परस्पर विरोधी शक्तियों के लिए अखाड़ा बन रही है। एक तरफ कला और निराशा होगी, दूसरी तरफ साइंस और शांति होगी। भावतिक विश्वासों को टूटना अकाल और महामारी, चाहत और शोक, पाप, बीमारी और मृत्यु के रूप में प्रतीत हो सकते हैं, जो तब तक नए चरणों को मानते हैं जब तक उनको कुछ और दिखाई नहीं देता। ये गड़बड़ी त्रुटि के अंत तक जारी रहेगी जब सभी कला को आध्यात्मिक सत्य में निगल लिया जाएगा। जैसे जैसे ये अंतर्ग्रहण समाप्त आता जाता है, वो दिव्य विज्ञान के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को आकार देता जाएगा। जैसे जैसे भौतिक ज्ञान कम होता जाता है और आध्यात्मिक समझ बढ़ती है, वास्तविक वास्तुओं को भौतिक की बजाय मानसिक रूप से पकड़ा जाएगा। इस अंतम संघर्ष के दौरान दुष्ट सोच वाले ऐसे साधनों को खोजने का प्रयास करेंगे जिनके द्वारा अधिक बुराई को पूरा किया जा सके। लेकिन जो लोग क्रिश्चियन साइंस को समझते हैं, वो अपराध को रोकेंगे, वो त्रुटि की अस्वीकृति में सहायता करेंगे, वो कानून और व्यवस्था बनाए रखेंगे और आनंद पूर्वक परिपूर्णता की निश्चितता का इंतजार करेंगे। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।